गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन ब्रज जनरंजन यशोदानन्दन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन ब्रज जनरंजन यशोदानन्दन ब्रज जनरंजन यशोदानन्दन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jai Gaurani Tai Jai Gaurani Tai Gaurani Tai Jai Gaurani Tai. Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jayam Vishnupad Paramahamsa Parigrahadakacharya Ashtotra Satahisi Vedanta Swami.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Maishtiki.
हरे कृष्णा. तो आज शनिवार है. हर शनिवार वैसे अंग्रेजी में प्रवचन होता है लेकिन आज हिंदी में होगा. तो आप सब आशा करते हैं हिंदी समझते हैं. तो कुंती महारानी की स्तुति ये विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में आठवां अध्याय. और अब तक हम 33वें श्लोक पर पहुंच गए हैं.
अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितः अभ्यगात् अजः त्वम् अस्य क्षेमाय वाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्।
अनुवाद। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए ही प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। कृपया दोहराइए। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए ही प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में कुंती महारानी भिन्न लोगों के मत का वर्णन कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के विषय में। क्योंकि भगवान अजन्मा है फिर भी वो जन्मते हैं, और ये एक भ्रामक विषय होने के नाते ये स्वाभाविक है कि तरह तरह के लोगों का मत इस विषय में अलग अलग होंगे। इसलिए उन्होंने कहा था पिछले श्लोक में, केचित आहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। केचित आहु, केचित मतलब ऐसे थोड़े लोग हैं, आहु ऐसा कहते हैं, अजम जातम की जो अज है जो बिना अजन्मे हैं, जातम वो जन्म लेते हैं, क्यों पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। महान पुण्यवान धर्मपरायण राजाओं के कीर्ति का विस्तार करने के लिए। तो केचित आहुः कहने के बाद इस श्लोक में वो कह रही हैं, अपरे और थोड़े लोग हैं, अन्य लोग हैं जिनका विषय, जिनका विचार अलग है। वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में क्यों प्रकट हुए? वसुदेवस्य देवक्याम याचितो ज्ञात। अभ्यगात मतलब जन्म लेना, याचितो मतलब याचना करने से, बहुत तीव्रता से प्रार्थना करने से। भगवान तीव्रता से प्रार्थना करने से पाए जाते हैं, तो किसने उनके लिए प्रार्थना किया? वसुदेव और देवकी ने। इसलिए यहां लिखा है वसुदेवस्य देवक्याम याचितो जगात। भगवान के कई गुण हैं, अनंत गुणों से संपन्न है भगवान श्री कृष्ण, इनकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे भगवान सत्य बोलते हैं हमेशा, परम सत्य तो स्वयं भगवान है, ऐसे उनके कई गुण हैं। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण उनका गुण है वो है कि वो भक्त वत्सल है। भक्त वात्सल्य एक ऐसा गुण है जिसके लिए वो अन्य सारे गुणों को भी त्यागने के लिए तैयार होते हैं। भक्त वत्सल मतलब भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, भक्त उनके लिए बहुत प्रिय हैं, और भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, अपने अन्य गुणों को त्यागने के लिए भी तैयार होते हैं। जैसे कि महाभारत में हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने वचन लिया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु जब देखा कि उनके प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन का प्राण के प्राण खतरे में है तो उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। साधारण नीति ये कहता है कि हमें वचनबद्ध होना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, और भगवान ही खुद तोड़ेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, उनकी निंदा लोग करेंगे। लेकिन भगवान परवाह नहीं करते, लोगों की निंदा करने दो मेरी कोई बात नहीं। ये निम्न श्रेणी का गुण है, प्रमुख क्या है कि मैं भक्त वत्सल हूं। अर्जुन खतरे में है तो अर्जुन को बचाना मेरा प्रथम कार्य है। तो जब भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान से तो भगवान उत्तर देते हैं। ऐसा हमें नहीं समझना है कि जो भगवान अज्ञा विग्रह श्री मूर्ति के रूप में यहाँ हमारे सामने विराजमान है वो केवल एक पत्थर है या धातु है। किसी भी साधारण पत्थर या धातु से जाके हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जब साक्षात भगवान उपस्थित हैं अपने दिव्य स्वरूप में सच्चिदानंद विग्रह में, धातु के माध्यम से हमारे दृष्टि के सामने वो प्रकट हुए हैं, तो ऐसे भगवान के सामने हम प्रार्थना करेंगे या इसी रूप को या इसी भगवान को हमारे अंतःकरण में रख के अंदर ही अंदर हम प्रार्थना करेंगे तीव्रता से, तो अवश्य भगवान प्रार्थना का जवाब देंगे। बस भगवान चाहते हैं कि हमारी जो प्रार्थना हो वो तीव्र हो, भक्ति से पूर्ण हो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ तुरंत चली जाती है, और जितने तीव्रता से बच्चा पुकारता है उतनी ही जल्दी माँ सब कुछ अन्य कार्य छोड़ के बच्चे के पास चली आती है। तो उसी प्रकार से भक्त के पुकार को सुनकर श्री कृष्ण तुरंत प्रकट होते हैं, उनका आगमन विलंबित नहीं होता, देर से नहीं आते हैं, वो भगवान शीघ्र आते हैं अपने गरुड़ के ऊपर सवार होकर। तो भगवान के भक्त कभी कभी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप प्रकट हो जाइए। चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि 500 वर्ष पूर्व परिस्थिति बहुत खराब थी, लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रख रहे थे, और अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं लेकिन भक्त के रूप में आए थे, उन्होंने जब सब जगह दशा देखी तो उनका हृदय बहुत दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों का उद्धार कैसे किया जा सकता है, लोगों के कल्याण के लिए एक ही उपाय मुझे दिखाई पड़ रहा है, और वो है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अवतीर्ण होना पड़ेगा। इस युग में केवल भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण ही एकमात्र धर्म है, ये युग धर्म है कलयुग का, तो श्री कृष्ण कैसे प्रकट होंगे, लेकिन फिर भी इसके अलावा तो कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे विचार करते करते अचानक शास्त्रों में से, गौतमी तंत्र में से उनको एक श्लोक याद आया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इसका मतलब क्या है? तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का पत्ता मात्र अर्पण करने से, जलस्य चुलुकेन वा, अपने मुट्ठी में थोड़ा सा जल, गंगा का जल और एक तुलसी का पत्ता अर्पण करने से भगवान के चरण कमलों में विक्रीणिते स्वम आत्मानम, भगवान इतने रेडी हो जाते हैं, इस भक्ति भरे भेंट को इतना पसंद करते हैं कि वो अपने आप को भी बेच डालते हैं भक्त के प्रति। विक्रीणिते विकुंठाकर, तो भगवान अपने आप को बेच डालते हैं भक्तेभ्यो, सबको अपने हवाले नहीं करते, सबके हवाले अपने आप नहीं करते, वो केवल भक्तेभ्य, केवल भक्तों के हवाले कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? भक्त वत्सल है, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो कई बाह्य कारण होते हैं और कई अंदरूनी कारण होते हैं। तो बाह्य कारणों में से एक कारण ये था कि अद्वैत आचार्य ने याचना की, प्रार्थना की, और श्री कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर रूप में प्रकट हुए। कौन सा रूप है ये? श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप, बहुत ही विशेष रूप। जब स्वयं भगवान एक भक्त के रूप में आते हैं, अपने ही भक्ति के रस का स्वाद लेते हैं, इस प्रकार से भगवान हमेशा अपने भक्तों के तीव्र पुकार को सुनते हैं और उसके अनुसार वो उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में ये कथा आती है कि एक प्रजापति थे अत्रि मुनि, उनकी पत्नी का नाम था अनसूया। अत्रि मुनि और अनसूया, इन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या की, और जगदीश्वर को उन्होंने बुलाया। स्पष्ट उनके मन में ज्ञान नहीं था कि ये जगत के ईश्वर कौन है, लेकिन उनको मालूम था कि कोई तो है। अद्वैत आचार्य ने जब पुकारा था भगवान को, उनको स्पष्ट ज्ञान था कि श्री कृष्ण परम सत्य है। तो श्री कृष्ण को उन्होंने पुकारा था कि आपको आना होगा, लेकिन अत्रि मुनि को ये स्पष्ट ज्ञान नहीं, उनको इतना ही मालूम था कि परम सत्य है कोई, एक जगत को संभालने वाले, जगत की ईश्वर नियंत्रण करता है। तो बहुत कड़ी तपस्या उन्होंने की, एक पैर पर खड़े हुए और फिर अंतःकरण में ध्यान करते रहे, और आखिर में तीनों ही उनके सामने आए। जो त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अंश अवतार में उनके सामने आए। ब्रह्मा के जो अंश अवतार थे वो थे सोम, शिव जी के अंश अवतार थे दुर्वासा मुनि और विष्णु के अंश अवतार थे दत्तात्रेय। तो तीनों वहां पर आए और अत्रि मुनि को आश्चर्य हुआ कि तीनों क्यों आ गए, मैंने तो जगदीश्वर एक को बुलाया तो तीनों कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं पता था कि हम तीनों ईश्वर हैं, लेकिन कौन से ईश्वर को आप बुलाना चाहते हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, हमको नहीं मालूम पड़ा कि आप किसको बुला रहे हैं, क्योंकि आप स्पष्ट आपके मन में विचार नहीं था कि कौन ईश्वर, कौन से ईश्वर को आप बुला रहे हैं, परम ईश्वर को बुला रहे हैं, केवल ईश्वर को बुला रहे हैं। ईश्वर कई हैं, हम सब ईश्वर हैं, छोटे 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 ईश्वर हैं, लेकिन भगवान परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण। तो परम ईश्वर है श्री कृष्ण, वो हम सबको शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत शक्ति हमें मिल जाती है। ब्रह्मा जी आदि देवताओं को ज्यादा शक्ति मिलती है, हम जैसे साधारण मनुष्यों को कम शक्ति मिलती है, जिससे कि हम थोड़ा कुछ नियंत्रण में ला सकते हैं, परंतु मूल नियंत्रण करता परम नियंता तो भगवान कृष्ण है। अत्रि मुनि को ये ठीक मालूम नहीं था, तो तीनों वहां पर आ गए। और आ गए तो आप कैसे आए, फिर उनको जवाब मिला कि आप तीनों कैसे आए। वास्तव में उनकी प्रार्थना ये थी अत्रि मुनि की कि हे जगदीश्वर, मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए। तो फिर भगवान ने सोचा मेरे जैसा कौन हो सकता है, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा, और भगवान के तुल्य कौन हो सकता है। तो स्वयं भगवान आए विष्णु के अंश अवतारत्रय के रूप में। तो हालांकि भगवान स्वयं आए और उनके देवताओं के अंश भी आए उनके सामने, लेकिन अत्रि मुनि को शुद्ध भक्त भगवान का नहीं माना जाता है। क्यों ऐसे, कोई बता सकते हैं? देवकी और वसुदेव ने क्या किया, क्या प्रार्थना की भगवान से, यह हम पढ़ रहे हैं ना, कि आप हमें पुत्र चाहिए, हमें आप पुत्र के रूप में आए, हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बनिए, ऐसी प्रार्थना देवकी और वसुदेव ने की थी। और अत्रि मुनि ने प्रार्थना की थी इस प्रकार से कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो देवकी और वसुदेव शुद्ध भक्त हैं कि नहीं है, हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो अत्रि मुनि क्यों नहीं है शुद्ध भक्त के? हाँ, कि उन्होंने भगवान को नहीं चाहा, उन्होंने प्रार्थना की आप जैसा कोई मुझे चाहिए, आप चाहिए ऐसे नहीं चाहा। इसलिए ये भी एक प्रकार की भौतिक इच्छा हो गई, इसलिए अत्रि मुनि को शुद्ध भक्तों के वर्ग में नहीं माना जाता है। परंतु वसुदेव और देवकी वो शुद्ध भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनको केवल कृष्ण चाहिए और कोई नहीं, कृष्ण के जैसा कोई नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं चाहिए था, उनको असली मूल भगवान चाहिए थे, वही मूल भगवान। तो फिर भगवान उनकी याचना सुनकर, उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है देवकी नंदन या वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वासुदेव या देवकी नंदन के नाम से श्री कृष्ण जाने जाते हैं। और इसके पीछे इतिहास बड़ा सुंदर है। दशम स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि कैसे प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। आप तो जानते हैं जन्माष्टमी के समय हम ये सब कथा सुनते हैं, वैसे रोहिणी नक्षत्र प्रभावशाली हो गए उस समय, और हालांकि वर्षा का समय था फिर भी वसंत ऋतु का माहौल निर्माण हो गया और सब जगह बिल्कुल रमणीय वातावरण हो गया। और ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से तुरंत बाहर, और प्रकट कैसे हुए? एक साधारण बच्चे की तरह नहीं, वो प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। वैसे चतुर्भुज रूप होता है तो भगवान बड़े दिखते हैं, लेकिन यहाँ चतुर्भुज रूप में तो थे लेकिन बच्चे के रूप में, छोटे चतुर्भुज रूप भगवान के, बालक चतुर्भुज। ये भी एक अद्भुत बात है। और फिर शुकदेव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप से यहाँ वर्णन करते हैं कि कैसे दिख रहे थे उस समय। और फिर हम ये सुनेंगे कि आगे चल के देवकी और वसुदेव ने कैसे स्वागत किया उनका, उनके मन में क्या विचार आए, और फिर भगवान ने क्या उत्तर दिया, और उनके इस प्राकृत्य के पीछे इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है।
तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् सीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महारवैदूर्यकिरीटकुण्डल त्विषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चं गदकङ्कणादिभिः विरोचमानां वसुदेव ऐक्षत।
तम अद्भुत बालकम्, ये बालक जो प्रकट हुए माता देवकी के गर्भ, कोई साधारण बालक नहीं थे। तम अद्भुत बालकम्, अद्भुत बालक थे, और किसलिए अद्भुत थे इसका वर्णन हो रहा है। अम्बुजे क्षणम, अम्बुज इक्षणम, इक्षणम मतलब आंखें, अम्बुज मतलब कमल, उनके कमल नयन थे, सुंदर कमलों जैसे, कमल के पत्तों जैसे उनके आंख थे। चतुर्भुजम, चार भुजाएं, शंख गदा आदि उद आयुधम, तो जो उनके चतुर्भुज चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, इनसे वो प्रकट हुए आयुधों से। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम, श्री का लक्षण जो एक सफेद बाल होता है भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर, वो भी दिखाई पड़ रहा था। साथ साथ गलशोभि कौस्तुभम, उनका गला जो है कौस्तुभ मणि से सुशोभित था। कौस्तुभ मणि केवल भगवान पहनते हैं और कोई नहीं पहनता है। पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, पीत अंबर, उनके वस्त्र जो है पीत रंग के थे, बिजली के रंग थे। सांद्र पयोद सौभगम, दिखने में बड़े सुंदर थे, और उनके शरीर का रंग काले बादलों के समान था। महा अर्ह वैदूर्य कीरित कुंडल, उनके जो किरीट हैं, किरीट पहने पहनकर जन्म लिए, किरीट और कुंडल वैदूर्य मणियों से, रत्नों से सुशोभित थे, और ये किरीट और कुंडल दोनों चमक रहे थे। ये वैदूर्य मणि भी एक ऐसी मणि है जो केवल वैकुंठ लोक में पाई जाती है, और भगवान इन मणियों को भी ग्रहण करते हैं, जैसे वो कौस्तुभ मणि सबको पहनते हैं, वैदूर्य मणि भी वो पहनते हैं। कभी ये लाल रंग का होता है, कभी नीला, कभी पीला, ऐसे अलग अलग रंग के होते हैं ये वैदूर्य मणि, बहुत मूल्यवान, यहाँ नहीं पाए जाते। तो ऐसे वैदूर्य मणि से भी वो सुशोभित थे। उद्दाम कांश अंगद कंकणाद भी, तो बहुत ही सुंदर कमर की पट्टी थी भुजाओं में, फिर उनके आभूषण थे, और फिर कंकण यहाँ अपने हाथों में भी पहने हुए थे। विरोचमानाम वसुदैव ऐक्षत, तो इस प्रकार से सुंदर तरीकों से अलंकृत अवस्था में जब वसुदेव ने उनको देखा, तो ये सुंदर दृश्य जब वसुदेव और देवकी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि चार अद्भुत चीजें थीं इस आविर्भाव के प्रति। पहली अद्भुत चीज तो ये है कि भगवान कंस, जो कि उनके माता पिता के शत्रु हैं, कंस के जेल में प्रकट हुए। वैसे भगवान तो कहीं एक अच्छे जगह में जन्म लेना चाहिए ना भगवान को, कि जेल में क्यों जन्म लेंगे? अगर किसी व्यक्ति को जन्म लेना, किसी अच्छे घर में कोई जन्म लेता है, खास करके कोई राजा वगैरह, तो कोई अच्छे जगह में जन्म लेगा, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में या कहीं अच्छे बिल्कुल स्थान में। जेल के अंदर कोई नहीं जाता जन्म लेने के लिए, तो भगवान ने ये स्थान क्यों चुना? तो बोलते ये एक आश्चर्य की बात है। दूसरी बात यह है कि हालांकि भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, फिर भी वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, बल्कि सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके उदर में है। और अब वही भगवान परम सत्य अब देवकी के उदर में है, अर्थात देवकी के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड आ गए। तीसरी बात यह है कि उनका जन्म हुआ तरह तरह के अलंकार और अलंकारों से युक्त उनका जन्म हुआ, लंबे बाल और किरीट इत्यादि, ऐसे तो कोई बच्चा, साधारण बच्चा जन्म नहीं लेता है। और चौथी बात कि हालांकि यही परम सत्य वसुदेव के पूजनीय देवता थे, देव थे, फिर भी अब वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय ये चार अद्भुत चीजें हुई थी। तो वसुदेव देवकी देखते रह गए, बहुत आश्चर्यचकित हुए, और वसुदेव ने मन ही मन में 10,000 गाय दान में दिए। वैसे जन्म होता है बच्चे का, खास करके क्षत्रिय परिवारों में, तो बड़े धूमधाम से वो जन्म का उत्सव मनाते हैं, नामकरण उत्सव इत्यादि जितने भी संस्कार होते हैं, तो उनके पास धन बहुत होता है। लेकिन इस समय वसुदेव सोच रहे थे, मैं क्या करूं, मैं तो कैदी हूं, जेल के अंदर हूं, मैं भला किस प्रकार का उत्सव मना सकता हूं? लेकिन देखिए, भक्ति इतनी सुंदर है कि भक्ति के लिए कोई भौतिक बंधन नहीं है। आप जेल हों फिर भी भक्ति कर सकते हैं। हमारी इस्कॉन संस्था में कई जगह जेलों में प्रचार का कार्यक्रम चलता है, इसलिए हमारा एक तरह का परंपरा में हम चलते आए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ है ना, और उन्होंने भी अपने माता पिता को प्रचार करना शुरू किया जेल के अंदर से ही, उनके माता पिता भी जेल में कैदी थे। और कितने बड़े, कितने सारे भक्त ऐसे हैं जिनके प्रति ऐसे अत्याचार किया गया, उनको जेल में डाला गया, जैसे देवकी वसुदेव। हम देखते हैं कि जब रूस देश में, रशिया में इस्कॉन के कार्य शुरू हुए, उस समय साम्यवादी राज्य चल रहा था, तो कितने सारे भक्तों को जेल में डाला गया, उनको पागल खाने में डाला गया, और पागल खाने में डालकर उनको तरह तरह के इंजेक्शन दिए गए जिससे कि वो वास्तव में पागल हो गए। ऐसे बहुत अन्याय अत्याचार भक्तों के प्रति हुए हैं, उनको जेल में डाला गया है बार बार। तो भक्ति मार्ग में जेल का एक बहुत विशेष महत्व है। और ये देखा गया है कि जेल के अंदर भी कई लोग भक्त बने हैं। ये समस्या सारे देश में, सारे विश्व भर में है कि लोग इतना गुनहगार क्यों बनते हैं, कानून क्यों तोड़ते हैं, और जेलों में जगह नहीं है, इतने गुनहगार हैं, इसलिए वो जल्दी छोड़ देते हैं उनको, कि क्या कर सकते हैं, इतना, इतने लोगों का देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो खैर, वसुदेव ने जेल के अंदर होते हुए भी अपने मन ही मन में मानस सेवा की भगवान की, 10,000 गायों को बांट दिया मन में। इसलिए हम भी ऐसे भगवान को बड़े ऐश्वर्यशाली पूजा कर सकते हैं मन में। हमारे पास घर में कोई पैसा भला ना हो, लेकिन हम विचार कर सकते हैं मन में, है ना, बहुत सुंदर मंदिर है, रत्नों से सुशोभित मंदिर है, हम भगवान को रोज गंगा, यमुना, सारे पवित्र नदियों का जल हम लेकर आ रहे हैं। हम पहले गंगा में जाते हैं, फिर यमुना में जाते हैं, सरस्वती में जाते हैं, नर्मदा में जाते हैं, कृष्णा नदी में, कावेरी में, हर एक नदी में हम जा रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं। तो भक्ति इतनी अद्भुत चीज है, ये शारीरिक अवस्था या भौगोलिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है, ये चेतना की बात है। तो वसुदेव ने इस प्रकार से दान करना शुरू किया, और फिर भगवान के प्रति प्रार्थना करना उन्होंने आरंभ किया। उनकी प्रार्थना में दो भावनाओं का मिश्रण था। कौन सी दो भावनाएं थी? एक कि ये मेरे आराध्य देव हैं और दूसरा कि ये मेरा प्रिय बच्चा है। दोनों बीच बीच में ऐसे टकरा रहे थे मन में। तो वैसे पहले तो उन्होंने परम सत्य कह के उनको संबोधित किया, लेकिन आखिरी श्लोक में कहने का हम बहुत डर रहे हैं। अरे क्यों डरना चाहिए, है ना? अगर परम सत्य है तो वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो क्यों कंस के प्रति, कंस के बारे में डरना चाहिए? क्योंकि इस समय फिर वसुदेव के मन में फिर वो वात्सल्य भाव आ गया, ये मिश्रण हो गया उनके हृदय में। सुंदर प्रार्थना करने के बाद फिर देवकी ने देखा श्री कृष्ण को और देवकी माता ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और प्रार्थना करते करते फिर देवकी माता कहने लगी कि ये रूप में रहने से मुझे डर लगता है, क्योंकि कंस आपको देखेगा तुरंत मार देगा आपको। और वैसे ये बड़ी विडंबना की बात होगी कि आप जिनके उदर में सारे ब्रह्मांड रहते हैं और आप मेरे गर्भ से जन्म लिए, कौन विश्वास करेगा? तो बड़ी विडंबना की बात होगी, लोग कोई विश्वास नहीं करेंगे, हमारी बहुत ही अजीब परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए आप, आपके एक साधारण बच्चे का रूप धारण कीजिए और वैसे मैं आपको छुपा के रखना चाहती हूँ ताकि कंस आपको नहीं देखे, लेकिन चार हाथ भुजाओं वाले बच्चे हैं तो कहाँ छुपा सकते हैं? अगर एक साधारण बच्चे जैसे हैं तो किसी भी घर में जाके छुपा सकते हैं, लेकिन चार भुजाओं के बच्चे हैं तो उनको सबको पता चलेगा कि ये विशेष बच्चा है, यही होगा विष्णु जो अवतार लिया है कंस के वध के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक साधारण बच्चे बन जाएं। तो देवकी माता के मन में भी ये एक मिश्रण चल रहा है। देवकी माता का भाव जो है वो ठीक वृंदावन का भाव नहीं है। वृंदावन का भाव या यशोदा माता का भाव क्या है कृष्ण के प्रति? वात्सल्य। लेकिन कृष्ण को किस रूप में वो देखती हैं? बच्चे के रूप में देखती हैं। कभी माता यशोदा सोचती हैं कि कृष्ण परम सत्य है? कभी नहीं। और अगर कोई बोले भी तो कभी विश्वास नहीं करेंगे। ये मन, ये विचार उनके मन में नहीं प्रवेश कर सकता। उनका वात्सल्य प्रेम व्रज भाव में इतना तीव्र है। देवकी माता का वैकुंठ भाव उतना नहीं है, लेकिन व्रज भाव भी नहीं है। वो वृंदावन के स्तर में नहीं है, लेकिन वृंदावन के पास में है। ठीक, मथुरा है, मथुरा वृंदावन के थोड़ा नजदीक है, और बाद में वो द्वारका चली गई। तो उनके मन में वो वात्सल्य स्नेह तो है, परंतु साथ साथ उस वात्सल्य स्नेह में ये तत्व ज्ञान या भगवत ज्ञान का मिश्रण है। इसलिए देवकी माता का प्रेम उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। देवकी माता को वात्सल्य स्नेह तो बहुत हुआ, परंतु वो रस उनको नहीं मिला जो माता यशोदा को, और साथ साथ में भगवान कृष्ण को भी वृंदावन में माता यशोदा का प्रेम स्वीकार करके जो आनंद मिला, वो माता देवकी के प्रेम स्वीकार करके उतना आनंद नहीं मिला। आनंद अवश्य मिला, परंतु व्रज की तुलना से उतना नहीं मिला, क्योंकि देवकी माता को पता था कि ये भगवान है, परम सत्य है, और ऐसे प्रेम से उनका मन थोड़ा विचलित हो गया और दोनों भाव उमड़ रहे थे, एक भगवत ज्ञान और दूसरा वात्सल्य प्रेम, दोनों हृदय में चल रहे थे। वसुदेव भी अपनी ओर से अपने धार्मिकता का त्याग करने के लिए तैयार हो गए। आपको तो पता है कि जब विवाह के समय वसुदेव देवकी को ले जा रहे थे अपने घर में, तो उस समय कंस ने देवकी के बाल पकड़े और आकाशवाणी सुनकर हत्या करने वाले थे। उस समय वसुदेव ने एक वचन दिया कंस को। कौन सा वचन दिया? कि जैसे ही पुत्र का जन्म होगा मैं आपके हवाले कर दूंगा उस पुत्र को। और वसुदेव इतने धर्मपरायण थे कि कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति ने भी उन पर विश्वास किया। कहा, दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए तुरंत अपनी बहन को छोड़ दिया। बाद में हाँ नारद मुनि आए, फिर कथा बदल गई, लेकिन पहले तो छोड़ दिया उन्होंने। और जब वसुदेव ने पहला पुत्र कंस के सामने लाया तो कंस को विश्वास नहीं हुआ, अरे वसुदेव ये इतने सत्यकामी है, ऐसे व्यक्ति को मैंने नहीं देखा, उनका हृदय पिघल गया। लेकिन फिर उनको नारद जी की बातें याद आई, नहीं नहीं नहीं, फिर अपना दुष्ट कार्य कंस ने शुरू किया। तो वासुदेव हमेशा सत्य के परायण हुआ करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, अपने वचन को कभी तोड़ते नहीं थे। लेकिन इस बार वसुदेव के मन में भी ये इच्छा हुई, अब मैं अपने वचन को नहीं रखूंगा, अब मैं भी सत्य बोलने से मैं त्याग करूंगा। तो वसुदेव ने भी सोचा कि अब मुझे सत्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण को देखकर वासुदेव सब कुछ भूल गए। और इसमें भी कोई दोष नहीं, कृष्ण के लिए, जो कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए कभी कभी साधारण नैतिकता को त्याग करना भी ये नहीं है। हालांकि इसको बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए सिद्धांत को, ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भक्त हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु वसुदेव का प्रेम इतना तीव्र था कि अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी सोच रहे थे कि कैसे किस तरह से उनको बचाया जाए। इस प्रकार से प्रार्थना की और भगवान ने फिर से उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके पहले उनको उपदेश करने लगे भगवान, कहने लगे कि हे देवकी और वसुदेव, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। कई साल पहले स्वयंभुव मनु के समय आप दोनों सुतपा और प्रश्नी थे। स्वयंभुव मनु मतलब पहला मन्वंतर, इस समय ये सातवां मन्वंतर चल रहा है, तो स्वयंभुव मनु पहला मन्वंतर था। तो कई लाखों लाखों साल बीत गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सुतपा आप एक प्रजापति थे और ये प्रश्नी आपकी पत्नी थी, और देवलोक में आप निवास करते थे, और आप मेरे भक्त थे, और आपने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कई सालों से तपस्या की। कितने साल तपस्या की? 12,000 दिव्य वर्ष। दिव्य मतलब स्वर्गलोक की तुलना से जो वर्ष हैं, यहाँ के समय में और स्वर्गलोक के समय में अंतर होता है। स्वर्गलोक का एक दिवस जो है यहाँ के 6 महीने हैं, पृथ्वी लोक के 6 महीने, और वहां जो ऊपरी लोक के निवासी हैं वो उनके सालों के, उनके समय के हिसाब से लाखों लाखों साल जीते हैं। तो 12,000 उनके वर्ष उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, ऐसे भगवान उनको बतला रहे हैं, क्योंकि उनको अपने जन्मों का याद नहीं था। तो उन्होंने कहा 12,000 वर्ष आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आप जंगल में गए और आप केवल सूखे पत्ते ग्रहण करते थे भोजन के लिए, ठंडी को सहन किया, गर्मी को सहन किया, बारिश को सहन किया, और इस प्रकार से मैं आपके सामने प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ तो आपने मुझे पूछा कि हम आपको चाहते हैं, आप हमारा पुत्र बनकर आइए, और मैंने उस बात को स्वीकार किया। और फिर त्रेता युग में मैंने पृष्णी गर्भ नाम के रूप में मैं प्रकट हुआ। तो फिर उस प्रकट्य में, उस अवतार में भगवान का नाम था पृष्णी गर्भ। तो देवकी और वसुदेव उस जन्म में भी भगवान के माता पिता थे, लेकिन उनका नाम, उनका रूप वगैरह अलग था, पृष्णी और सुतपा। तो देखिए, जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं माता पिता को स्वीकार करते हैं, परंतु किसी भी साधारण व्यक्ति को माता पिता नहीं स्वीकारते, कोई विशेष व्यक्ति को माता पिता स्वीकारते हैं जो उनके विशेष भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद एक सुंदर बात बताते हैं कि अगर आपको भगवान पुत्र के रूप में चाहिए तो आपको भी सुतपा और कृष्ण की तरह कड़ी तपस्या करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको गोलोक वृंदावन जाना है तो उतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। फिर आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भक्तों के संग में रहिए, भगवान की सेवा करके गोलोक धाम चले जाइए। ये तपस्या तो आजकल कहाँ संभव है, और पृथ्वी लोक में, और वो भी कलयुग में संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा कि उस जन्म में आप सुतपा कृष्ण थे और मैंने आपको वरदान दिया कि तीन जन्म मैं आपके पुत्र बनकर आऊंगा और तीन जन्मों के बाद फिर आप मेरे धाम में वापस लौट कर जाओगे। फिर उसके बाद हे माता आप अदिति बनकर आई जो देवताओं की माता है, और हे पिता आप कौन बन के आए? कश्यप मुनि। तो अदिति और कश्यप मुनि आप दोनों स्वर्गलोक में निवास करते थे और आपने भी फिर से याचना की मेरे लिए और मैं आपके पुत्र के रूप में आया, और उस समय मेरा नाम था वामन या उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई, और इस बार मैं आपके पुत्र के रूप में भी तीसरी बार प्रकट हुआ हूं, और इस जन्म के बाद आपको और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप सीधे मेरे धाम को लौट के चले जाओ। श्री जीव गोस्वामी जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य, उन्होंने अपने षट संदर्भों में लिखा है कि इन तीन अवतारों में से पहले जो दो अवतार थे भगवान के, कृष्ण गर्भ और वामन, वो भगवान के अंश अवतार थे, लेकिन इस तीसरी बार स्वयं भगवान आए हैं, स्वयं श्री कृष्ण आए हैं, उनके अंश अवतार नहीं के रूप में नहीं प्रकट हुए यहाँ पर, और इस प्रकार से उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप केवल इस प्रकार से मेरा स्मरण करते रहिए और आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वसुदेव और देवकी ने इस बात को बड़े ध्यान से सुन लिया, आश्चर्यचकित होकर सुना, और फिर भगवान जो है तुरंत एक साधारण बच्चे के रूप में परिवर्तित हुए, और फिर ये कथा तो आप जानते हैं कि वसुदेव ने फिर बाल कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल में लाके रख दिया, और वहां जो यशोदा मैया को एक लड़की हुई थी उस लड़की को यहाँ पर मथुरा जेल में लेकर आए। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वसुदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को खतरे में डाला है ना, ऐसा कोई पूछा जा सकता है ना, स्वाभाविक है। तो इसके बारे में वैष्णव आचार्य कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हाँ, ये एक स्वाभाविक विचार है इस भौतिक जगत में, जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तो एक दुनिया की एक रीत है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुदेव भगवान श्री के पिता थे, शुद्ध भक्त हैं, भगवान के एक पार्षद हैं, तो जो भी कार्य ऐसे पार्षद करते हैं वो योग माया द्वारा प्रेरित होते हैं। यह हम भौतिक जगत में जो लोग कार्य करते हैं वो काम वासना द्वारा प्रेरित होते हैं, भगवान की माया शक्ति द्वारा प्रेरित कार्य होते हैं, परंतु नंद महाराज और यशोदा मई और वसुदेव और देवकी मैया जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके कार्य योग माया द्वारा, भगवान की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, इसलिए उनका हर एक कार्य दिव्य स्तर पर होता है, और इसमें कोई दोष नहीं है उनके कार्य में, क्योंकि ये भगवान की लीला थी, भगवान की योजना के, लीला शक्ति की योजना के अनुसार ही ऐसे हो रहा था। तो फिर यहां पर जब आए योग माया, फिर कंस आए, फिर कंस ने उस बच्ची को उठाया, वो बच्ची उनके हाथ से उड़कर ऊपर चली गई आसमान में जाकर, बहुत डांटा योग माया ने कंस को। तो खैर, इस प्रकार से देवकी और वसुदेव के पुत्र बन के भगवान आए, क्योंकि तीन जन्म पहले उन्होंने याचना की थी, वसुदेवस्य देवक्यां याचितो जगात। अब जगात मतलब जन्म लिया उन्होंने। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि हाँ, ये कारण को हमने कह दिए कि पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, कि पुण्यवान राजाओं के कीर्ति का विस्तार करने के लिए प्रकट हुए हैं, और महाराज यदु जैसे प्रिय भक्तों के वंश में प्रकट हुए। परंतु और एक कार्य बताया जाता है, वो और एक कार्य है, भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वो तो भक्तवत्सल हैं, और भक्तवत्सल होने के नाते अपने भक्तों की बात को मानते हैं, और वसुदेव और देवकी ने जो याचना की, प्रार्थना की, उसके अनुसार वो आए हैं। तो ये कारण है कि यहाँ वो बता रहे हैं। वसुदेव और देवकी ये वात्सल्य रस में है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कुंती महारानी की स्तुति की चर्चा करते समय कि 9 महान ऐसे वात्सल्य रस में स्थित हुए भक्तों का वर्णन हम कर चुके हैं। देवकी माता का नंबर 5वां है और वसुदेव नंबर 8वां है, और फिर उनके बाद में है सांदीपनि मुनि, उनके कृष्ण के और बलराम के गुरु। तो ये भी वात्सल्य रस में स्थित हैं, लेकिन वो केवल भगवान को अपना पुत्र चाहते थे, लेकिन पुत्र के साथ लीला करने का या उनकी लीलाओं को देखने का मौका उनको नहीं मिला। ये सौभाग्य, अहो सौभाग्य, केवल वृंदावन में कृष्ण यशोदा मैया और नंद महाराज को मिला। इसलिए एक बार द्वारका में देवकी माता ने कहा कि मेरी हृदय में एक इच्छा अपूर्ण रही है कि मैंने आपके बाल लीला नहीं देखे। जैसे ही आपका जन्म हुआ तो फिर आपको ले जाया गया आपकी जान बचाने के लिए, इसलिए मेरा हृदय अभी तक संतुष्ट नहीं है। तो उस समय ऐसे बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तुरंत बाल रूप में वहां प्रकट हुए और तुरंत देवकी माता का स्तनपान करने लगे। हालांकि इस समय वैसे देखा जाए तो कृष्ण का उम्र काफी बड़ा था, वो द्वारका में आए थे, लेकिन भगवान की लीला ऐसी थी, भगवान फिर से बाल रूप केवल अपनी माता देवकी के लिए, उनको आनंद देने के लिए। और एक जगह से रुक्मिणी देवी देख रही थी, रुक्मिणी देवी, अरे मेरे पति को क्या हो गया, स्वाभाविक है ना, तो अपने पति को देखे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या होगा, कैसे चलेगा अब। लेकिन फिर आश्चर्य हो गए, फिर भी उनको ये रूप भी बहुत प्रिय लगा और इस रूप की तरह उन्होंने एक विग्रह बनाया, और वो विग्रह आज भी है। कहाँ है? उडुपी में है। वही बालकृष्ण का रूप जो रुक्मिणी देवी ने वहां देखा, क्योंकि देवकी माता को वो इच्छा थी, वो अपूर्ण इच्छा एक थी कि यशोदा माता वो कितनी भाग्यशाली है, उनको बाल लीला देखने को मिले, उसमें भाग लेने को मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला। देखिए कितना दर्ददायक स्थिति है ये। पहले तो 7 बच्चे चले गए, जन्म लेते लेते ही चले गए, और ऐसे क्रूर परिस्थितियों में, और जब 8वां बच्चा हो जाता है और उसको भी ले जाया जाता है, बस देखिए कैसे माता पिता की अवस्था। और इसके लिए क्या इन्होंने 3 जन्मों से उतने 12,000 वर्ष तपस्या की थी ये दुख सहन करने के लिए? लेकिन देखिए ये भी एक आध्यात्मिक जगत का रहस्य है। भक्ति के तरीकों को समझना, भगवान के तरीकों को समझना, ये बहुत कठिन है। केवल एक भक्ति से पूर्ण हृदय ही इस बात को जान सकता है और समझ सकता है। तो फिर भगवान ने देवकी माता को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। तो खैर इससे हम ये जान सकते हैं कि भगवान भक्तवत्सल होने के नाते अपने भक्तों के लिए होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो बाय द वे अन्य कार्य भी कर लेते हैं। शायद ये आए हैं तो अन्य भी कार्य करना है, मुख्य कार्य भक्तों के लिए आते हैं। अन्य कार्य कौन से हैं? जैसे यहाँ पर बताते, हालांकि वो अजय हैं, त्वमस्य क्षेम आय, जगत के कल्याण के लिए क्या करते हैं, वधाय च सुरद्विषाम। और जो भक्त हैं भगवान के उनके कल्याण के लिए, और जो भक्तों के खिलाफ सुरद्विषाम, जो सुर मतलब देवतागण भक्त, उनसे जो द्वेष करते हैं सुरद्विषाम, ऐसे व्यक्तियों का विनाश करने के लिए, वधाय, वध करने के लिए वो प्रकट होते हैं। खास दुष्टों का नाश करने के लिए यहाँ पर नहीं आते भगवान। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर भगवान को दुष्टों का नाश करना है तो यहाँ उनको आने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने भौतिक कृति को थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो किसी लाखों लाखों असुरों का नाश कर सकते हैं। कभी अकाल करके, कभी भूकंप करके, कभी सुनामी लाकर, कभी कुछ भी करके वो कई लोगों का नाश करा सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। तो ये मुख्य कारण नहीं है, शायद दुष्कृताम, ये मुख्य कारण नहीं है। भगवान केवल उनके भक्तों के लिए आते हैं, भक्त पुकारते हैं, भक्त चाहते हैं, इसलिए वो आते हैं। प्रहलाद ने चाहा भगवान को देखने के लिए, इसलिए वो आए। हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया, इसलिए नहीं आए वो। हिरण्यकशिपु को मारना होता तो भगवान कितने तरीकों से मार सकते थे हिरण्यकशिपु को। तो भगवान के अवतीर्ण होने का मुख्य कारण प्रहलाद को खुश करने का था, प्रहलाद के ऊपर कृपा करने का था, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। लेकिन जब आए प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए तो बाय द वे मार भी दिया हिरण्यकश्यप को। ऐसे है तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए ही सब कुछ करते हैं और भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं। ये है संबंध दोनों के बीच में, प्रेम का संबंध। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं हम भी क्यों ना भक्त बने, क्या नुकसान है भक्त बनने में। इसलिए हम भी अगर भक्त बनेंगे तो भगवान की कृपा पात्र हो सकते हैं। भक्त वत्सल, भगवान के भक्त वात्सल्य गुण का वास्तविक जो अर्थ है उसका अनुभव हमारे जीवन में हम कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी के कोई प्रश्न है? कहाँ है माइक? हरे कृष्ण।
तो जी आप बता रहे थे कि देवकी और वसुदेव ने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में चाहा। श्री प्रभुपाद जी दसवें स्कंध के तात्पर्य में और पांचवें स्कंध में एक जगह लिखते हैं कि भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगने का इच्छा ये भी एक इंद्र तृप्ति की भावना है। तो इसका थोड़ा टीचर लिखता है,
ये उस श्रेणी में नहीं आता जिस श्रेणी में अत्रि मुनि ने चाहा। भगवान जैसा एक बच्चा, साक्षात भगवान को मांगना मतलब उनकी जो इच्छा है वो केवल भगवान के ऊपर केंद्रित है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भौतिक इच्छा रख के कोई चाहा है तो वो इंद्र तृप्ति के लिए होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे इच्छा की ताकि आप उनकी सेवा कर सके वात्सल्य भाव में, जैसे देवकी और वसुदेव अर्थात सुतपा और प्रश्नि ने किया था उस पहले जन्म में, तो वो शुद्ध भक्ति है। ऐसे प्रभुपाद उनके तात्पर्य में चतुर्थ स्कंध में बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि 12,000 वर्ष तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हम केवल यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करके वापस चले जा सकते हैं। और उसी वात्सल्य भाव में अगर किसी को चाहिए तो गोलोक वृंदावन में वात्सल्य भाव में भी सेवा कर सकते हैं वो भगवान कृष्ण के। अन्य कई भाव हैं जिनमें भक्त भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान थोड़े थक जाते हैं पिता बन के। पिता तो है वो, है ना, सबके पिता है। लेकिन पिता जब होता है तो बच्चे क्या करते हैं पिता के प्रति, हमको ये चाहिए वो चाहिए, है ना, हमेशा मांगते रहते हैं धनम देही रूपम देही, हमको बहुत सारी चीजें चाहिए भगवान से। भगवान थक जाते हैं, सब लोग आते हैं मांगने मांगने, अब मैं पिता नहीं बनूंगा, अब मैं बच्चा बनूंगा और मेरे माता पिता से मांगूंगा, मुझे ये दो, मुझे मक्खन दो, दूध दो, ये दो वो दो, है ना। तो भगवान भी ऐसा रूप धारण करते हैं, तो भगवान भी कभी कभी बच्चा बनना पसंद करते हैं। हाँ, माइक है।
1, Krishna Garbh, Vamadev, Amsha and Vishnu is a Purna avatar. But in that case, the Rama avatar is also considered to be a Purna avatar.
प्रश्न है कि वामन अवतार भी अंश अवतार हैं तो कृष्ण तो पूर्ण अवतार हैं तो राम अवतार भी क्या अंश अवतार हैं या नहीं एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे श्रीमद् भागवत के इस प्रथम स्कंध के श्लोक में इस बात की पुष्टि की जाती है कि जितने भी भगवान के अवतार हैं अवतार मतलब जो उतर के आते हैं अवतीर्ण होते हैं इस भौतिक जगत में सारे भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं जिसको कला कहते हैं अंश या कला एके च अंश कला पुंसः अंश या कला लेकिन श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है वो अवतारी है वो केवल अवतार नहीं है अवतारी मतलब अवतारों के उद्गम है सोर्स ऑफ ऑल द अवतार फाउंटेन हेड तो श्री कृष्ण के अलावा जितने भी और रूप हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं विस्तार हैं रामाद मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् कला रामाद मूर्तिषु जितने भी राम आदि रूप के कला नियमेन तिष्ठन् ये भी सब कला है भगवान की अंश है
हरे कृष्ण वामन अवतार के वर्णन में भी आपने बताया तो वामन देव बलि महाराज के लिए आ गए और कृष्ण यदुकुल के लिए आ गए तो कृष्ण गर्भ ऐसा कुछ पता सुना ही नहीं कृष्ण गर्भ
तो कृष्णी और सुतपा के लिए आए उनको प्रसन्न करने के लिए आए क्योंकि उन्होंने चाहा था कि आप पुत्र बन के आइए और यही कृष्ण गर्भ बाद में और एक भक्त के सामने प्रकट हुए कौन ध्रुव महाराज तो ध्रुव महाराज के सामने जो भगवान का रूप प्रकट हुआ वो भी कृष्ण गर्भ का रूप था लेकिन वो सत्ययुग में हुआ और एक सत्ययुग में जब प्रकट हुए वो सुतपा कृष्ण के सामने वो त्रेता युग में था स्वायंभुव मनु के समय और फिर और किसी उसके बाद वाले एक सत्य युग में वो ध्रुव महाराज के सामने उसी रूप में भी प्रकट हुए किस युग में सुतपा और कृष्ण के समय उस इतना वर्णन शास्त्र में नहीं आता है परंतु केवल इतना है कि उनके पुत्र के रूप में आए बस इतना ही भागवत में वर्णन है हम इस स्तर में नहीं हैं कि कृष्ण को माधुर्य रस में प्रसन्न कर सकें ऐसी स्थिति में हम कृष्ण को किस रस के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं और कौन रस श्रेष्ठ है इस समय हमारा रस केवल एक है और वो क्या है गुरुदास दास से भी गुरुदास गुरु के आदेश के अनुसार भगवान कृष्ण की सेवा करना और वैष्णवों की सेवा करना सही समय पर जो आत्मा का स्वरूप है जिस रस में आत्मा का संबंध भगवान कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में वैकुंठ जगत में है वो स्फुरित हो जाएगा भगवान की इच्छा अनुसार तो इसके लिए हमें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी केवल जैसे आदेश हैं श्री प्रभुपाद ने इतने सुंदर सुंदर आदेश दिए हैं उन आदेशों के ऊपर हमें केवल चलते रहना चाहिए प्रकृति का रूप सुनामी द्वारा लाखों लोग मारे गए क्या वे असुर थे जिन्हें भगवान ने सबक दिया नहीं ये भावना सही नहीं है हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सब असुर हैं इत्यादि ऐसे सोचना हमारे लिए ठीक नहीं, किंतु हाँ इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है और उसके अनुसार देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की मृत्यु अमुक प्रकार से होने के लिए निश्चित है। कोई प्लेन के अपघात में मरेगा, कोई अपने घर में आराम से मरेगा, तो जिस प्रकार से हमको प्राण त्यागना है वो निश्चित है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, तो वैसे होता है पिछले कर्मों के अनुसार हमको कोई ना कोई प्रतिकार उसका या फल मिलता है कर्मों का। तो अगर हम ऐसा सोचने लगे तो हमारे हृदय बहुत क्रूर हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे कि उनको कर्मों का फल मिला है तो फिर करुणा दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, भक्त ऐसा नहीं होते, भक्तों के करुणा से भरा होता है। वो सोचते हैं कि देखो उनको अज्ञान है इसलिए बारंबार उनको इस प्रकार से मरना पड़ता है, बारंबार इनको ये त्रिविध ताप सहन करने पड़ते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। ये सुनामी क्या है? ये अधिदैविक क्लेश है, देवताओं के द्वारा प्रदत्त, क्योंकि देवतागण जो है वो प्रकृति के अलग अलग कार्यों को संभालते हैं। ये सुनामी वगैरह ये एक देवदत्त, देव प्रदत्त दुख है, अधिदैविक क्लेश है। तो हमें समझना चाहिए कि जो भी कुछ हम यहाँ करेंगे ये भौतिक जगत में दुख ही दुख है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके यहाँ से जल्दी से हमें निकल जाने की चेष्टा करनी चाहिए। सुबह के भागवतम में बताया था कि युधिष्ठिर महाराज का रथ ऊपर था तो जमीन तक, जमीन कब आया? नरोवा कुंजरोवा, ऐसे कृष्ण युक्ति सूची ना, किस प्रकार द्रोणाचार्य की हत्या करनी चाहिए। द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली थे, साधारण तरीके से उनकी हत्या असंभव था। तो भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, आप जाके बोलो कि अश्वत्थामा नाम के हाथी मर गया है, और भीम से कहा जाके अश्वत्थामा नाम का हाथी है उसको मार डालो। भीम से ने तुरंत जाके अश्वत्थामा हाथी को मार दिया। तो एक दृष्टि से देखा गया तो युधिष्ठिर सच बोल रहे थे, लेकिन धोखा देने की एक दृष्टि से सत्य को छुपाना या स्पष्ट नहीं बोलना यह भी एक प्रकार का झूठ है ना। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हाथी मर गया है ना, यह भी झूठ है ना एक प्रकार का। तो कई कहते हैं कि क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने झूठ कहा इसलिए उस समय क्षण के बाद फिर उनका रथ नीचे आ गया जमीन पर, तब तक ऊपर चल रहा था। लेकिन कई वैष्णव आचार्य बताते हैं कि ये नहीं कारण था, कारण क्या था? भगवान ने जब झूठ बोलने के लिए आदेश दिया तो उस आदेश का पालन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज हिचकिचाए, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया, झूठ बोला इसलिए नहीं। अगर भगवान हमको झूठ बोलने के लिए कहेंगे तो जितना भी झूठ बोले हम कोई बात नहीं, लेकिन जब तक भगवान स्वयं आके नहीं बोलेंगे हमें नहीं बोलना, हमें सत्य ही बोलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त तो थे ही, ये एक लीला चल रही है। वो कह रहे थे भगवान का कहना क्यों नहीं माना, क्योंकि ये एक लीला चल रही है। अगर सबने भगवान की बात पहले से मानी होती तो फिर बात नहीं चलती, एक लीला है। और युधिष्ठिर महाराज एक धर्मपरायण राजा है, वो धर्मराज हैं, नीति का पालन करते हैं, इसलिए वो प्रसिद्ध थे। आखिरी प्रश्न, हालांकि देवकी और वसुदेव श्री कृष्ण के माता पिता थे फिर भी उन्होंने अपना ज्यादा जीवन का समय जेल के अंदर क्यों बिताया, और भगवान ने उनको जेल से मुक्त क्यों नहीं किया उनके जन्म के बाद? वैसे जेल के बाद थोड़े समय बाद तो वो मुक्त हो गए, तो थोड़े समय के बाद जेल के बाहर आ गए। कंस को जब पता चला तो जल्दी से छोड़ दिया उन्होंने, खास करके जब योग माया उनके हाथ से निकल गई तो कंस ने सोचा कि अब तो मामला हो चुका, कृष्ण कहीं जन्म ले चुका है। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया उनको बाहर। लेकिन क्यों वो जेल में ज़्यादा समय बिताए? भगवान की इच्छा है, वो हम सबको सिखाना चाहते हैं कि भक्त बनना इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी रूप से हम हमेशा सुविधाजनक परिस्थितियों में रहें। कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी अगर हमारी भक्ति में हम विचलित न हो तो ये आदर्श भक्ति है। और इसी के लिए हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं इतिहास में, उनको बहुत सारी कठिनाइयां मिली हैं जीवन में। प्रहलाद को कितने कष्ट सहन करने पड़े, पांडवों को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, तो उसी प्रकार से देवकी वसुदेव को भी कष्ट सहन करना पड़ा। क्योंकि भगवान हम सबको सिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे भक्त कितने महान हैं, मेरे लिए कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, और फिर भी कभी मेरी सेवा को त्यागते नहीं हैं। तो हमारे जीवन में जो छोटे मोटे कठिनाइयां आती हैं उनसे विचलित होकर भगवान की सेवा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ये तात्पर्य है। ठीक है, तो अभी दर्शन होंगे, दर्शन के बाद प्रसाद होगा, कृपया सभी प्रसाद पाकर जाइएगा। और कुंती महारानी की स्तुति फिर कल सुबह 8 बजे से, और फिर कल दोपहर भी। हरे कृष्णा।